श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से आमोस नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है पाप का न्यायोचित दंड। श्रोताओ हमें पूरा विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहां, किसी ने बताया
किसी ने बताया हमें। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने प्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से आमोस नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन में हम सब देख रहे हैं कि परमेश्वर इसराइलियों को बार बार आगाह करता है, मौका देता है कि वे उसकी ओर फिरें, अपने पापों को छोड़ करके उस जीवते परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं, परंतु इसराइल उनकी बातों को नहीं सुनता है। हम इन्हीं बातों को देख रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आपका वचन सत्य है जो हमसे बोलता और बातचीत करता है, हमारे जीवन को टटोलता है और हमें समझाता और सिखाता है। आज जब हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन में से अध्ययन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, सीखते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब हम आपके वचन में से अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, एक एक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। हाँ प्रभु, आपके दास आमोस के द्वारा से आप हम सब से बातचीत करें, हमें समझाएं, सिखाएं, ताकि हम अपने जीवन में आपके आशीषों को देखने पाएं। इस समय हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो बीमार अवस्था में हैं, परेशान और चिंता में हैं, तनाव में हैं। प्रभु जी, आप उन पर कृपा दृष्टि करें, उन्हें छुएं, चंगाई दें, शांति दें, आशीष दें, ताकि एक एक जीवन आप में धन्य होने पाए, आज का वचन उनके लिए अमृत वाणी बनने पाए। हाँ प्रभु, क्योंकि आपका वचन जीवन देने वाला वचन है। आज के समय को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम सबके साथ हो, हमारे सहायक हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि हम आमोस नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 7 आमोस की पुस्तक का तीसरा प्रमुख भाग आरंभ करता है और इन अंतिम तीन अध्यायों में भविष्य का दर्शन है। यद्यपि आमोस को गंवार और देहाती प्रचारक कहा जा सकता है, वह ऊंचाइयों पर जा सकता था, परमेश्वर ने उसे जो दर्शन दिखाए उनमें से कुछ वास्तव में अद्भुत हैं। जैसा कि हमने पिछले अध्ययन में देखा टिड्डियों का दर्शन, जहां पर हमने देखा कि परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया और मैं क्या देखता हूं कि उसने पिछली घास के उगने के आरंभ में टिड्डियां उत्पन्न की। जी हां, ये टिड्डियां थी। और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए आमोस नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसके 2 पद को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, जब वे घास खा चुकी तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा, वह कितना निर्बल है। आमोस परमेश्वर से कहता है, नाश हो गए, हमारे पास तो अब खड़े होने का साहस भी नहीं है। वह परमेश्वर से याचना करता है कि वह उन्हें क्षमा कर दे और उनकी सहायता करे। मेरे प्रियो, देखिए परमेश्वर अब भी उनके साथ धीरजवंत है। आमोस नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, इसके विषय में यहोवा पछताया और उसने कहा, ऐसी बात अब ना होगी। परमेश्वर कहता है कि ऐसी बात अब न होगी। उसने टिड्डियों से उन्हें मुक्ति दिलाई और उन्हें अच्छी फसल प्राप्त हुई। आप सोच रहे होंगे कि अब तो वे परमेश्वर की दया को स्मरण करके उनकी ओर हो गए होंगे, परंतु जी नहीं, वे परमेश्वर के पास नहीं आए। तब क्या होता है, आगे देखिए। आग का दर्शन, आमोस नबी की पुस्तक 7:4 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया और क्या देखता हूं कि परमेश्वर यहोवा ने आग के द्वारा मुकदमा लड़ने को पुकारा और उस आग से महासागर सूख गया और देश भी भस्म होने लगा था। मेरे प्रियो, अनेक टीकाकारों के विचार में यह आग नहीं अकाल है। मैं भी कहता हूं कि आग के साथ अकाल तो पड़ेगा ही, क्योंकि अकाल अर्थात सूखे के समय में प्रायः जंगलों में आग लग जाती है। वहां का विनाश आग ही के कारण था। आमोस इस बात को स्पष्ट कहता है। आमोस नबी की पुस्तक 7:5-6 में आगे लिखा है, तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, रुक जा, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा, वह कैसा निर्बल है। इसके विषय में भी यहोवा पछताया और परमेश्वर यहोवा ने कहा, ऐसी बात फिर न होगी। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने वर्षा भेजी और आग बुझ गई। परमेश्वर ने उन पर फिर दया दिखाई, क्योंकि आमोस कहता है, यहोवा पछताया, क्योंकि लोगों ने प्रार्थना की थी। परमेश्वर दयालु है। जी हां मेरे मित्रों, प्रभु यीशु का इनकार करके अनंत विनाश में प्रवेश करने का कारण है दयालु, अनुग्रहकारी और प्रेमी पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, और दयालु प्रेमी परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना अति भयानक काम है। आप उसके विरुद्ध में पाप करके नहीं बच सकते। इस संसार में तो आप बच जाएंगे, परंतु उसके पास, उसके सन्मुख आप नहीं बच पाएंगे, क्योंकि वह न्यायी परमेश्वर है। आगे हम देखते हैं साहुल का दर्शन। आमोस नबी की पुस्तक 7:7-8 में लिखा है, उसने मुझे यह भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी दीवार पर खड़ा है और उसके हाथ में साहुल है। यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इसराइल के बीच में साहुल लगाऊंगा। परमेश्वर के वचन में साहुल का उदाहरण अनेक स्थानों में दिया गया है। यर्मिया नबी की पुस्तक 31:38-39 में हम पाते हैं, लिखा है, देख, यहोवा की यह भविष्यवाणी है, ऐसे दिन आ रहे हैं जिनमें यह नगर हननेल के गुम्मट से लेकर कोने के फाटक तक यहोवा के लिए बनाया जाएगा। भावने की रस्सी फिर आगे बढ़कर सीधे गारे पहाड़ी तक और वहां से घूमकर गोवा को पहुंचेगी। यह मापने की रस्सी साहुल है। जी हां, धर्मशास्त्र में जहां जहां साहुल का उल्लेख किया गया है, वहां वहां परमेश्वर के दंड का संदर्भ है। आप देख सकते हैं यशाया नबी की पुस्तक 28:17, जकर्या 2:1-2 में, दानियल की पुस्तक में 5:27 में, दानियल ने बेलशासर से कहा कि परमेश्वर ने तराजू में तौलकर उसे कम पाया। परमेश्वर जब जब किसी को नापता है या तौलता है, तो निश्चित ही है कि वह परमेश्वर की दृष्टि में कम है और दंड पाएगा। आमोस अब उनके लिए मध्यस्थता नहीं करता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि परमेश्वर का दंड न्यायोचित है और यह न्याय परमेश्वर की ओर से है। हम आमोस नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसके 9 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, मैं अब उनको ना छोड़ूंगा, इसहाक के ऊंचे स्थान उजाड़ और इसराइल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगे और मैं यारोबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कहने का अर्थ है कि यारोबाम शांति में नहीं रह पाएगा। यशाया 48 उसके 22 पद में परमेश्वर का सिद्धांत प्रकट है, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। यारोबाम को शांति नहीं मिलेगी। जी हां, चाहे कोई भी क्यों ना हो, दुष्टों के लिए शांति नहीं है। भविष्यद्वक्ता का व्यक्तिगत अनुभव हम देखते हैं। दर्शनों के मध्य यहां आमोस का व्यक्तिगत अनुभव भी आ गया है जो यहां पर यथोचित है। तो आइए हम देखते हैं आमोस 7 अध्याय उसके 10 और 11 पद। 7 अध्याय 10 और 11 पद में लिखा है, तब बेतेल के याजक अमस्याह ने इसराइल के राजा यारोबाम के पास कहला भेजा, आमोस ने इसराइल के घराने के बीच में तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की है, उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता, क्योंकि आमोस यूं कहता है, यारोबाम तलवार से मारा जाएगा और इसराइल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। ध्यान दीजिए, अमस्या झूठ बोल रहा है। आज कलीसिया में भी ऐसी ही दुखद बात होती है। मैं अपने प्रचार में सरलतम भाषा का प्रयोग करता हूं, परंतु लोग इसका गलत अर्थ निकालकर मुझे झूठा बना देते हैं। कभी कभी तो वे मेरी बात समझ नहीं पाते, परंतु कभी कभी वे जानबूझकर ऐसा करते हैं। मेरे प्रियो, अमस्या सोने के बछड़े का पुजारी था। आप सोच सकते हैं कि वह कैसा धूर्त होगा। वह भाड़े का टट्टू था और मीठी मीठी बातों द्वारा राजा का मन जीत लेता था। वह अच्छा प्रचारक तो नहीं था, परंतु वह लोगों को आकर्षित कर सकता था। मेरे प्रियो, उसने राजा से झूठ कहा। आमोस ने यह नहीं कहा था कि यारोबाम तलवार से नाश होगा। उसने कहा था कि परमेश्वर यारोबाम के घराने के विरुद्ध तलवार लेकर खड़ा होगा। इसका अर्थ है कि युद्ध होगा और युद्ध हुआ भी। इसराइल अंततः बंधुआई में चला गया। आमोस नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसके 12 और 13 पद में आगे लिखा हुआ है, तब अमस्याह ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहां से निकलकर यहूदा देश में भाग जा और वहीं रोटी खाया कर और वहीं भविष्यवाणी किया कर, परंतु बेतेल में फिर कभी भविष्यवाणी न करना, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। अमस्याह ने आकर आमोस का अपमान किया और उसे अज्ञानी कहा। मैं जानना चाहता हूं कि अमस्याह की पुस्तकें कहां हैं, यदि उसने कोई पुस्तक लिखी थी। 2500 वर्ष पुरानी आमोस की पुस्तक तो हमारे पास है। अमस्याह ने उसे गंवार कहा और राजा के आराधनालय में प्रचार करने योग्य नहीं कहा। उसने कहा, यहां मधुर वचन बोले जाते हैं, हम किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहते हैं। इसलिए वह कहता है, हे दर्शी, यहां से निकलकर यहूदा देश में भाग जा। दूसरे शब्दों में, यहां से चंपत हो जा, हम तुझे यहां देखना भी नहीं चाहते हैं। तू राजा के आराधनालय में प्रचार तो कर रहा है, परंतु तू इस योग्य नहीं है। तू इस प्रचार मंच के योग्य पढ़ा लिखा नहीं है। वह ग्रामवासी अवश्य था, परंतु अनाड़ी नहीं था। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं कि वह उस प्रचार मंच के योग्य था। वह परमेश्वर का एक महान संदेश वाहक था। प्रजा समझ रही थी कि वह परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है। परमेश्वर के वचन का प्रचारक कलीसिया के लिए सांत्वना का कारण होता है। आज के युग में यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर का वचन देने वाला परमेश्वर का दास चाहिए जो सत्य वचन उन तक पहुंचाने पाए। हम आगे देखते हैं आमोस नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसके 14 और 15 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, मैं न तो भविष्यद्वक्ता था और न भविष्यद्वक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गुलर के वृक्षों का छांटने वाला था, और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इसराइल से भविष्यद्वाणी कर। मेरे प्रियो, आमोस का उत्तर प्रकट करता है कि वह एक आम मनुष्य था, वह झूठा भविष्यद्वक्ता नहीं था। जी हां, उसने कहा, क्यों, मैं जानता हूं कि मैं भविष्यद्वक्ता नहीं हूं, मैं भविष्यद्वक्ता होने का दावा भी नहीं करता, मैं तुम्हारी पाठशाला में नहीं गया, मैं तो भविष्यद्वक्ता का पुत्र भी नहीं हूं, मैं तो एक चरवाहा हूं और गुलर के वृक्षों को छांटता हूं। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं भविष्यद्वाणी करूं, यही तो सच्चा आत्मविश्वास है। जी हां, मनुष्य यदि प्रभु की सेवा में आता है तो उसे परमेश्वर की बुलाहट का पूरा विश्वास होना चाहिए। यदि उसे लेश मात्र भी संदेह हो तो वह सेवा ना करे। कहा जाता है कि यदि आपके पास करने को और कुछ है तो सेवा में ना आए। मैं इस बात से सहमत नहीं, क्योंकि हम में से अनेक प्रचारक आज कुछ और ही कर रहे होते। मुख्य बात तो यह है, क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया है? यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आप बीच में और कुछ ना आने दें। जी हां, अब आमोस अमस्याह के लिए कठोर वचन कहता है, लोग मुझसे कहते हैं कि मैं कभी कभी किसी के लिए या किसी संस्था या कलीसिया के लिए बहुत कठोर शब्द का उपयोग करता हूं। मैं सच में कहता हूं कि मेरे मन में किसी के प्रति न कोई बुराई है और न ही घृणा है। मैं केवल परमेश्वर का वचन सुनाने का प्रयास करता हूं। मुझसे कहा जाता है कि विश्वासी होने के कारण मुझे मधुर वचन बोलने चाहिए। आज का विषय प्रेम होना चाहिए। मेरे मित्रों, सुनिए आमोस भाई अमस्या से क्या कहता है। आमोस नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसके 16 और 17 पद में, इसलिए अब तू यहोवा का वचन सुन, तू कहता है इसराइल के विरुद्ध भविष्यद्वाणी मत कर और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुना। इस कारण यहोवा यूं कहता है, तेरी स्त्री नगर में वेश्या हो जाएगी और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारी जाएंगी और तेरी भूमि डोरी डालकर बांट ली जाएगी और तू आप अशुद्ध देश में मरेगा और इसराइल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। मेरे प्रियो, अब ध्यान दीजिए कि आमोस क्या कहता है, अब तू यहोवा का वचन सुन। उसके पास अमस्याह के लिए भी परमेश्वर का वचन था। यह परेशान करने वाली और एक अत्यधिक कठोर भविष्यवाणी है, परंतु सत्य वचन है। अशूरों ने वास्तव में इसराइल की रहने वाली स्त्रियों को वेश्या बनाया था। उनके पुत्र पुत्रियां कुचले गए थे और जो बच गए उन्हें बंधुआई में ले जाया गया था। अमस्याह को भी बंदी बनाकर ले जाया गया था। मुझे पूरा विश्वास है कि मरणशया पर उसने यही कहा होगा कि राजा को प्रसन्न करने से तो अच्छा होता कि वह परमेश्वर को प्रसन्न करता। यदि हम प्रचारक परमेश्वर का सत्य वचन सुनाने से चूकते हैं तो हमें राजनेताओं पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं। कि वे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मेरे मित्रों, यदि आप प्रचारक होकर परमेश्वर का वचन नहीं सुना रहे हैं तो आपसे बड़ा देशद्रोही और कोई नहीं है, आपसे बड़ा अपराधी और कोई नहीं है। यदि आपको परमेश्वर की बुलाहट है तो आपको सत्य वचन के प्रसार की बुलाहट है। यदि आप वचन का प्रचार नहीं कर रहे हैं, सत्य वचन को लोग तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आप प्रभु यीशु के विश्वासघाती हैं। ये कठोर शब्द हैं, परंतु आमोस के वचन भी कठोर ही थे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और बहुतों के लिए कड़वा है और बहुतों के लिए अमृत के समान मीठा है, क्योंकि जो इसे स्वीकार करते हैं उनके लिए आशीष है और जो इसे स्वीकार नहीं करते हैं उनके लिए श्राप है, विष है, क्योंकि वे अपने जीवन को नरक की ओर ले जा रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आज मुझे और आपको भी अपने जीवन पर झांक कर देखने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन किस ओर बढ़ा रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी अपने पास ही दबा करके रखे हैं या दूसरों को हम दे रहे हैं? मेरे मित्रों, आज हमें विश्वासी होने के नाते इस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आमोस जो एक साधारण व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की बुलाहट को समझ लिया और वह परमेश्वर के वचन को देने के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल दिया। लोग उसके लिए बुरा भला कहते रहे, परंतु वह परमेश्वर की वचन को, सत्यता को लोगों तक पहुंचाता रहा। आज आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए भी यही सत्य वचन है कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाएं, उनके जीवन में उद्धार की बातों को लाएं, ताकि अपने मनों को फिराकर वे परमेश्वर की ओर फिर सकें। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और इसी के साथ अध्याय 7 भी समाप्त होता है। हम अगले अध्ययन को अध्याय 8 से आरंभ करेंगे। तब तक आप सब अपने जीवन में इस वचन को बनाए रखें, उसकी निकटता में रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
मेरा